ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
सभी भक्तों का स्वागत है आज के गीतामृत कार्यक्रम में। आपको सूचित करना चाहेंगे, आप लोगों को जो फॉर्म्स दिए गए हैं, सब लोगों को फॉर्म्स मिले तो आज हमारे गीतामृत क्लास के पश्चात एक हमारा प्रेजेंटेशन होने वाला है, जो हम बगल वाला लैंड खरीदने के प्रयास में हैं इस्कॉन के लिए, तो एक फंड कलेक्शन का प्रेजेंटेशन होगा। और ये जो फॉर्म आप लोगों को दिया गया है ये उसी के संदर्भ में है जो कि आपको भर कर देना है आज के कार्यक्रम के पश्चात। तो तीसरा अध्याय कर्मयोग, भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो श्रेष्ठ हैं और जो आचार्य हैं उनका उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए। और हमने पिछले कुछ श्लोकों से सुना कि भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि श्रेष्ठ कौन है, आचार्य कौन है, और फिर वो अपने स्वयं का उदाहरण दिए कि मैं जो सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं जो जगद आचार्य हूं इस पूरी सृष्टि का, तो मैं कैसे जिम्मेदारी निभा रहा हूं जन साधारण को सिखाने के लिए। लोक संग्रह एवापि। और फिर भगवान ने आगे बताया कि जब कोई श्रेष्ठ या कोई आचार्य अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता तो उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। तो हमारे पिछले सिटिंग में हमने जो 26वां श्लोक लिया था इस तीसरे अध्याय का, जिसमें भगवान ने दो मुख्य बातें अर्जुन को बताई। एक तो बुद्धि भेद, जब कोई अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभाता तो कैसे वो जन साधारण के अंदर उनकी बुद्धि में भेद उत्पन्न कर रहा है, और जो अपने उत्तरदायित्व को सही प्रकार से निभाता है उसको भगवान ने कहा है समाचरण, सम्यक रूप से जो आचरण करता है। और भगवान ने 26वें श्लोक और 25वें श्लोक, इन दोनों श्लोकों के द्वारा विधि और निषेध, ये जो न्याय है, इस न्याय को लेकर अर्जुन को समझाया कि कौन सी विधि का पालन करना चाहिए और क्या निषेध है उससे वंचित रहना चाहिए। तो आज का श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस अध्याय का एक और प्रसिद्ध श्लोक जिसके ऊपर श्रील प्रभुपाद ने बहुत से प्रवचन दिए, तो इसलिए इस श्लोक को हम दो भागों में चर्चा करेंगे। आज की सेटिंग में पार्ट वन रहेगा और फिर अगले बुधवार को इस श्लोक का पार्ट टू रहेगा। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा।
गुणात्मा कर्ता हमिति मन्यते प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता हमिति मन्यते।
तो बहुत सरल है इसका संस्कृत समझना। प्रकृति, ये जो भौतिक प्रकृति है भगवान उसे उल्लेख कर रहे हैं। क्रियमाणानि कि इस भौतिक प्रकृति में क्रियमाण जो जीव, हम सब बद्ध जीव, तो हम लोग जो कर्म कर रहे हैं वो किसके अधीन कर रहे हैं? प्रकृति द्वारा दिए गए तीन गुण, गुणै कर्माणि सर्वशः। तो प्रकृति द्वारा दिए गए हैं और तीन गुणों के अधीन हम कर्म में लगे हुए हैं, परंतु जो विमूढ़ात्मा है, केवल मूढ़ात्मा नहीं बल्कि विमूढ़ात्मा अहंकार के वश सोचता है कि मैं कर रहा हूं, कर्ता अहम, मैं हूं कर्ता। तो इसका पूरा अनुवाद इस प्रकार से है, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक, जिस पर हमारे आचार्यों ने बहुत सी टीकाएं लिखी और श्रील प्रभुपाद ने अपने अन्य ग्रंथों में भी इस श्लोक का उल्लेख बहुत किया है, क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल रेलेवेंट श्लोक है जो कि हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस श्लोक का अनुभव कर सकते हैं। न केवल अनुभव कर सकते हैं बल्कि जी रहे हैं इस श्लोक के आधार पर, और क्या हमें सीखना है ये भगवान इस श्लोक के द्वारा बता रहे हैं। तो आज के हमारे चर्चा के विषय इस प्रकार से रहेंगे, पिछले श्लोकों से आज के श्लोक का संबंध क्या है, प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव भगवान ने आज सर्वशः इस शब्द का इस्तेमाल किया है तो उसकी क्या व्याख्या है, अहंकार के कारण कर्ता होने का भाव, और अंततः विमूढ़ात्मा शब्द की व्याख्या। तो ध्यान में रखिए, भगवान अब पिछले श्लोकों से जो समझा रहे हैं वो ये समझा रहे हैं कि अर्जुन, जब कोई श्रेष्ठ, जब कोई आचार्य अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा था तो भगवान ने उनको विभिन्न प्रकार की श्रेणी में डाला है। तो पिछले दो श्लोकों में भगवान ने उनको दो श्रेणियों में डाला और आज के श्लोक में भगवान एक तीसरी श्रेणी बता रहे हैं अर्जुन को, जिसके अंदर ये आते हैं। तो श्लोक क्रमांक 25, 26 और 27 ये तीनों का कनेक्शन है। तो श्लोक क्रमांक 25 में भगवान ने उनको अविद्वान कहा था कि जो अपने जिम्मेदारी को नहीं निभाते, उनको भगवान ने कहा था अविद्वान। और आपको यदि याद है तो अविद्वान का अनुवाद हमने किया था लेस इंटेलिजेंट। अविद्वान का अर्थ ये नहीं कि नो इंटेलिजेंस बट लेस इंटेलिजेंट। और उसके पश्चात फिर श्लोक क्रमांक 26 में भगवान ने दूसरी श्रेणी बताई जो कि अज्ञानी है। तो इनको हम कहेंगे प्रैक्टिकली नो इंटेलिजेंस। और फिर आज के श्लोक में भगवान ने तीसरी श्रेणी, थर्ड क्लब, द क्लब ऑफ सुपर फुलिश पीपल, सुप्रीमली फुलिश पीपल, विमूढ़ आत्मा। तो ये श्रेणी आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तो कनेक्शन क्या है कि भगवान धीरे धीरे अर्जुन को ये श्रेणियों में अग्रसर कर कर ले जा रहे हैं। कृष्णा इज टेकिंग अर्जुन डीपर इनटू द कैटेगरीज ऑफ फुलिश पीपल एंड एक्सप्लेनिंग हाउ ही शुड नॉट कम इन दिस कैटेगरी एट ऑल। Although Arjun was coming, Krishna is explaining how you should come out of these three categories. तो अब आज के श्लोक में भगवान ने प्रकृति के तीन गुण इस पर जोर दिया है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। तो श्रील प्रभुपाद ने उदाहरण दिया था, अपने कई प्रवचनों में प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है, और बीबीटी का ये फेमस पिक्चर पेंटिंग जिसके अंदर ये जो तीन देवियां ऊपर बहुत ही सुंदर दिख रही हैं, जो कि हरेक जीवात्मा के ऊपर हावी हैं। यहां पर नीचे आप देखिए कि मनुष्य कैसे बंधा हुआ है रस्सियों से, जैसे कठपुतली का खेल होता है। सो कैसे कठपुतली के खेल में जो कठपुतलियां होती हैं उनको जो रस्सी बांधी जाती है वो रस्सियां दिखती नहीं है ना। आप लोगों ने देखा है कठपुतली का खेल, हम लोग खेल भी रहे हैं। कठपुतलीकार हम नहीं है, हम कठपुतली बने हुए हैं, और कठपुतलीकार कौन है, ये तीन सुंदर देवियां। तो कैसे हरेक जीव बंधा हुआ है इन गुणों से, और संस्कृत में गुण के दो अर्थ हैं। गुण का एक अर्थ है क्वालिटी, और गुण का एक और अर्थ है रस्सी। तो हम इन क्वालिटी से बंधे हुए हैं जिसकी चर्चा हम करेंगे, और रस्सियों से बंधे हुए हैं। तो प्रभुपाद अपने प्रवचनों में ये उदाहरण दिए हैं कि जैसे एक मोटी रस्सी होती है, उसको तीन धागों से एक मोटी रस्सी बनती है। तो वैसे ही इस संसार में जो तीन गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, तो इन तीन गुणों से प्रकृति ने ऐसी ऐसी रस्सियां बनाई हैं कि जो दिखती नहीं, लेकिन हम सब बंधे हुए हैं इन रस्सियों से। इनविजिबल बॉन्डेज, विच इज मोर डेंजरस देन विजिबल बॉन्डेज। तो हम लोग हाथ पसार के ऐसे खुले आजाद हिंदुस्तान में घूम रहे होंगे, और हमको लग रहा होगा कि अरे हम तो हर साल इंडिपेंडेंस फ्रीडम मनाते हैं हमारे देश का, आई एम अ फ्री सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड आई हैव माय फंडामेंटल राइट्स, हाउ आई एम अ फ्री सिटीजन। परंतु इस श्लोक के अनुसार हम सब बंधे हुए हैं, और ये प्रकृति के जो तीन गुण हैं, यहां पर तीन कलर्स बताए हुए हैं, जो बेसिक तीन कलर्स होते हैं। प्रभुपाद ने यह भी उदाहरण दिया कि जितने सारे रंग हम देखते हैं वो रंग किन से बनते हैं, तीन बेसिक कलर से बनते हैं, येलो, ब्लू और रेड, और इनके कॉम्बिनेशन से इतने विभिन्न प्रकार के कलर्स बनते हैं। तो प्रकृति के ये तीन बेसिक गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, और इनके मिश्रण से ये पूरी प्रकृति में जो हम चित्र विचित्र चीजें देखते हैं वो इन तीन गुणों के मिश्रण से ही है। तो तीन गुणों का प्रभाव, श्रीमद् भागवत का ये श्लोक 11वें स्कंद का, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पुरुषम सत्व संयुक्तम अनुमिया चमादिभि कामादिभि रजोयुक्तम क्रोधा यस्तमसायुतम A person exhibiting qualities such as self-control is understood to be predominantly in the mode of goodness. Similarly, a passionate person is recognized by his lust, and one in ignorance is recognized by qualities such as anger. तो ये केवल ब्रॉड एक रूपरेखा दी है, इसके अंदर बहुत से सब कैटेगरीज आते हैं और अलग अलग प्रकार से हमारे शरीर में हमारी चेतना का जो मिश्रण होता है तीन गुणों से, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ये. इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स इन विच वी आर बाउंड. तो सबसे पहले हम सत्वगुण लें. तो सत्वगुण के जो लक्षण बताए हैं, सबसे पहला लक्षण सत्वगुण का है कि जो आत्म संयमी है, जिसके अंदर संयम है. और हर एक मनुष्य को यह सत्वगुण में स्थित होना आवश्यक है, क्योंकि मनुष्यों के लिए बताया गया है कि हम मनुष्य ही केवल आत्म संयमी हो सकते हैं, कि आत्मा के स्तर पर संयमी. बाकी जो जानवर या पशु हैं वो केवल उनके जो इंद्रियां हैं उन पर ही कार्य करते हैं. तो जो मनुष्य आत्म संयम नहीं दिखा रहा, उसके अंदर सत्वगुण बिल्कुल नहीं. थोड़ा बहुत आत्म संयम दिखा रहा है तो थोड़ा बहुत सत्वगुण है. तो आत्मसंयमी सत्वगुण के और लक्षण बताए गए हैं कि जिसके अंदर दया भाव है, जिसके अंदर कृपा भाव है, जो पुण्यवान जीवन जीता है, काइंड, नोबल, चैरिटेबल, और जिसकी प्रवृत्तियां भगवत साक्षात्कार की ओर अग्रसर रहती हैं. तो आप लोग सब उस कैटेगरी में ऑलरेडी हो. क्यों? क्योंकि जो रजोगुण और तमोगुण में वो कभी संयम से एक जगह बैठकर भगवत साक्षात्कार की बातें सुन ही नहीं सकता. कभी नहीं सुन सकता. और आप इसको टेस्ट कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो रजोगुण या तमोगुण में पूर्ण प्रकार से रचा पचा है, उसको आप थोड़ा सा भगवत गीता के बारे में बोलना है प्रारंभ कीजिए और फिर प्रतिक्रिया देखिए वहां से. तो तुरंत जिसको बोलते हैं ना लिटमस टेस्ट, ये टेस्ट हो जाएगा कि वो व्यक्ति कितना उसके अंदर सत्वगुण की मात्रा है. और उससे ये भी समझ में आ जाता है कि अगर सत्वगुण की मात्रा कम है तो ये नहीं कि रजोगुण की भी कम है. नहीं, फिर रजोगुण की बड़ी हुई होगी, क्योंकि वो गैप पूरा करना है. और फिर तमोगुण की उस हिसाब से. तो सत्वगुणी व्यक्ति उसके अंदर ये सारे गुण देखे जाते हैं. अब रजोगुणी व्यक्ति जिसके अंदर लोभ, सबसे जो प्रोमिनेंट क्वालिटी एक रजोगुणी व्यक्ति का क्या है? लोभ, ग्रीड. और ग्रीड या लोभ के वजह से वो व्यक्ति हर समय असंतुष्ट रहता है. तो जो व्यक्ति हर समय डिससैटिस्फाइड या असंतुष्ट रहे, चाहे कितना भी उसको कुछ प्राप्त हो जाए, उसके पश्चात भी जो असंतुष्ट रहे, वो व्यक्ति रजोगुण की कैटेगरी में बहुत ही भली भांति स्थित है. और फिर गुण बताए गए हैं कि जैसे उस लोभ के वजह से उसके अंदर काम वासना, और काम जो है वो अलग अलग प्रकार का रूप लेता है. कोई व्यक्ति धन के प्रति कामुक है, कोई व्यक्ति यश के प्रति कामुक है, कोई व्यक्ति किसी शारीरिक सुख के प्रति कामुक है, तो जब उसके अंदर रजोगुण की प्रधानता होती है तो ये जो काम वासना है ये इस भौतिक संसार में पूरी तो होने नहीं वाली। तो जब पूरी नहीं होती तब उसको क्रोध आता है, और फिर जो रजोगुण का सगा भाई तमोगुण वो उसके साथ ही रहता है। When lust is dissatisfied, which is going to be, then it turns into anger. और फिर हम देखते हैं कि व्यक्ति क्रोध के अंदर जो कार्य करता है, अब इसके भी अलग अलग तमोगुण के गुण बताए गए हैं कि जो व्यक्ति नशे में धुत रहता है क्रोधी स्वभाव का, और जो व्यक्ति हर समय आलसी रहता है शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, दोनों रूप से व्यक्ति के अंदर आलस्य, और ये सब कलयुग में हम बहुत ही प्रोमिनेंटली देख सकते हैं। इसलिए जैसे कि पिछले युगों को उस हिसाब से बताया गया था, जैसे सत्ययुग जहां पर सत्वगुण की प्रधानता, तो वहां पर ये लोभी क्रोधी गिने चुने कोई यहां वहां कोई दूसरे प्लैनेट में दिखाई देते थे, जैसे हिरण्यकश्यपु इत्यादि। और धीरे धीरे जब बाकी के गुणों की प्रधानता होने लगी तो फिर युगों में परिवर्तन हुआ, फिर सत्ययुग से त्रेता, फिर द्वापर, अब कलयुग में हाल ऐसा है कि आप देखिए जैसे ही सत्वगुण का कोई कार्य सामने आता है तो रजोगुण और तमोगुण, जो कि कलयुग की प्रधानता है, कलयुग की प्रधानता क्या है, रजोगुण और तमोगुण, तो जैसे ही सत्वगुण कहीं पर आने का प्रयास करता है, अपने आप को कहीं पर दिखाने का प्रयास करता है, तो कलयुग की प्रधानता है कि रजोगुण और तमोगुण उसको तुरंत उसके ऊपर हावी होकर उसको दबाता है। जैसे कि अगर आप उस रंग को लीजिए तो जो पीला रंग है वो सत्वगुण दर्शा रहा है, तो जैसे ही पीला रंग उसमें इतनी ताकत नहीं होती तो जो नीला और लाल रंग है वो उसके ऊपर हावी हो जाता है, तो फिर आपको पीला रंग बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। तो वो हाल हो रहा है कलयुग के अंदर। इसलिए आप देखिए, मुझे एक आर्टिकल भेजा था हाल ही में एक हमारे भक्त ने, तो उसमें उन्होंने बताया कि भारत में आप देखो कि जितने धाम हैं, विशेष रूप से जो धाम हैं उनके धाम में कोई रेनोवेशन या धाम का पुनरुत्थान का कोई प्रोजेक्ट, उसको सरकार बढ़ावा नहीं देती। क्यों? क्योंकि यदि धाम का पुनरुत्थान होता रहे तो ज्यादा लोग धाम में जाएंगे, और जितने लोग धाम में जाएंगे तो वहां सत्वगुण ज्यादा प्रधानभूत है, तो धाम में जाने के वजह से सत्वगुण का प्रभाव उनके ऊपर ज्यादा होगा, तो फिर रजोगुण तमोगुण कम होगा, और यदि रजोगुण तमोगुण कम हुआ तो फिर मार्केट हमारा कैसे चलेगा, क्योंकि मार्केट को चलाने के लिए, इकोनॉमी को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, कामुक और लोभी व्यक्ति चाहिए। जितने लोग कामुक होंगे, जितने लोग लोभी होंगे, उतने प्रोडक्ट हमारे बिकेंगे। इसलिए बहुत से हमारे भक्तों का यह भी अनुभव है कि आप पंचवटी में बैठकर बंबई की ओर जाइए, अब ये धाम है, धीरे धीरे जैसे वो कल्याण से एंट्री करती है ट्रेन तो मोड्स चेंज हो जाते हैं, अपने आप जो ट्रेन में बैठे हुए लोग थोड़ा भागना शुरू करते हैं इधर उधर, कि अभी बाहर देखते इतने लोग भाग रहे हैं, तो उनके अंदर भी वो रजोगुण आ जाता है कि अब ट्रेन चल रही है, ट्रेन पहुंचेगी अपने समय पे, लेकिन अंदर थोड़ा रेस्टलेस हो जाते कि कब पहुंचेगी कब पहुंचेगी, और वो मोड्स हावी होना शुरू हो जाते हैं उनके ऊपर। तो अब हमने इसकी पहले भी बहुत चर्चा की है कि तीन गुणों के अंदर बहुत कुछ आता है, तीन गुणों के अंदर लोगों की पसंद नापसंद आती है, क्या वो पसंद करते हैं क्या वो नापसंद करते हैं, नापसंद के अंदर भी तीन गुण आते हैं। कई ऐसे हैं जिनको आप भगवान का प्रसाद दीजिए, वो भगवान का प्रसाद बिल्कुल छुएंगे नहीं, क्योंकि वो जो रजोगुण और तमोगुण इतना प्रभावी है उनके ऊपर कि वो जाकर कहीं कुछ सड़ा हुआ खाएंगे, और वो सड़ा हुआ खाने के लिए वो ज्यादा मेहनत कर कर पैसे देंगे, लेकिन शुद्ध ताजा भगवान का प्रसाद उसको स्पर्श नहीं करेंगे। तो नापसंद के अंदर भी उनके गुणों को देखा जा सकता है। तो पसंद नापसंद, लाइक्स डिसलाइक्स, क्या रंग उन्हें पसंद है, क्या भोजन उन्हें पसंद है, क्या गीत या संगीत उन्हें पसंद है, कौन सी जगह उन्हें पसंद है, कौन सा समय उन्हें पसंद है। जैसे सुबह का समय, सुबह का जो समय है वो तमोगुणी व्यक्ति को पसंद आता है, किसके लिए, सोने के लिए। तो इसमें भी समझ में आता है कि सुबह का समय किसी व्यक्ति को क्यों पसंद आएगा, एक सत्वगुणी व्यक्ति को सुबह का समय क्यों पसंद आएगा। कुछ योग साधना करने के लिए, आजकल तो अगर कोई सुबह उठ के योग भी कर रहा है तो ये मत मानिएगा कि उसके अंदर सत्वगुण है, उस गलतफहमी में मत रहना आजकल, क्योंकि कई लोग रामदेव बाबा का योग करने के लिए सुबह 5 बजे भी उठते हैं, लेकिन मन में धारणा क्या है कि मैं क्यों रामदेव बाबा का योग सीखना चाहता हूं, ताकि मेरा शरीर एकदम सुडौल बने, क्यों, ताकि इस शरीर से और इंद्रिय भोग मेरा हो पाए। तो वो रजोगुण की प्रवृत्ति है। तो ये सारी चीजें, समय, स्थान, कौन से स्थान, कई लोगों को ऐसे स्थान पसंद हैं कि जो रजोगुण और तमोगुण में उसमें प्रधानभूत देखा जाता है, और कई लोगों को सत्वगुण पसंद है। जैसे कि ये मंदिर, अब ये मंदिर में जो सत्वगुणी व्यक्ति है उसको यहां का माहौल बहुत पसंद आएगा कि बाहर लॉन है, गाय है, यहाँ पे भगवान है, कीर्तन है, तो यहाँ का माहौल। जो रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति है वो आकर देखेगा कि कुछ आंखों के लिए कुछ चकाचौन यहां पर कुछ दिख नहीं रहा है, तो वो देखेगा अरे घास है, गाय है, क्या कुछ कुछ और जानवर होने चाहिए, कुछ बंदर, कुत्ते, बिल्ली, ये सब। चिड़ियाघर में जाएगा उसको वो सब देखना पसंद करता है। तो ये अलग अलग जो तीन गुण हैं उनकी श्रेणियां बताई गई है। अब उदाहरण है रामायण से ये तीन भाइयों का, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। ये उदाहरण इसलिए दिया गया है कि एक ही परिवार में ये तीन गुण, कुंभकर्ण प्रतीक तमोगुण का, जो कि 6 महीने लगातार सो सकता था, और रावण प्रतीक रजोगुण का, इतनी काम वासना कि इतनी पटरानियां उसकी थी, फिर भी यहां नासिक आया इतनी दूर लंका से, हाँ, सीता का अपहरण करने के लिए। तो रावण प्रतीक है रजोगुण का और विभीषण प्रतीक है सत्वगुण कि लंका में रहते हुए भी विभीषण वो सारे सत्वगुणी नियमों का पालन कर रहे थे, भगवान श्री राम के अनन्य भक्त वो पहले से ही थे। तो ये उदाहरण इसलिए दिया है कि रामायण में बताया कि एक ही परिवार में ये सब एक ही तीनों भाई, सगे भाई, कुंभकर्ण, विभीषण और रावण सगे भाई लेकिन अलग अलग गुणों में स्थित। उसी प्रकार से कलयुग में एक ही शरीर के अंदर ये तीन भाई पाए जाएंगे। हमारे इस एक ही शरीर के अंदर, कई बार हम इस भ्रांत धारणा में रहते हैं कि अरे मैं तो मेरे अंदर तो खाली विभीषण ही विभीषण है। नहीं, हम परख कर देखेंगे, जब जपमाला हाथ में लेंगे तो हरे कृष्ण महामंत्र दिखाता है कि कौन से कोने में रावण बैठा हुआ है, कौन से कोने में कुंभकर्ण सो रहा है। और कई बार तो हम जिस भ्रांत धारणा में रहते हैं, ढूंढते ढूंढते विभीषण नहीं दिखता। पहले इस इल्यूजन में रहते हैं कि पूरे अंदर विभीषण ही विभीषण है, लेकिन फिर जब करने के बाद समझ में आता है कि किसने कितना स्पेस ले रखा है हमारे अंदर। रावण ने सबसे ज्यादा जगह ले रखी, कुंभकर्ण ने, उसके बाद और भी जगह, और बेचारे विभीषण को कई बार तो बाहर ही निकाल दिया हमने। तो ये कलयुग की विशेषता है कि एक ही शरीर के अंदर ये तीनों गुण कैसे हावी हैं हमारे ऊपर। अब जो तीन गुणों का बंधन है वो तीन स्तर पर है। अभी देखिए, हमको लग रहा होगा कि सत्वगुण इसका बंधन हो सकता है क्या? हाँ, सत्वगुण का भी बंधन बताया गया है, क्योंकि हमको सत्वगुण से भी ऊपर उठना है, जिसको कहते हैं शुद्ध सत्व। उदाहरण दिया है कि जो सत्वगुण है वो एक एयरपोर्ट का रनवे है, तो जो रनवे होता है एयरपोर्ट का वो किस लिए होता है? ताकि एयरप्लेन वहां से ऊपर उठे, ऊपर उड़े। यदि एयरप्लेन जो है वो रनवे में घूमता रहे, घुमा के ले आए, बहुत रनवे इतना बड़ा है, घुमा के लाते हैं आप, तो पायलट खाली रनवे पर घुमा के ले आए सब पैसेंजर को, तो फायदा क्या? तो रनवे का मुख्य प्रयोजन है कि उसको ऊपर उड़ाए एयरक्राफ्ट को। इसलिए सत्वगुण का मुख्य प्रयोजन है कि हमें इस संसार से मुक्त करा के भगवत धाम की यात्रा कराए। तो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया, जैसे बेड़ियां होती है या हथकड़ियां होती हैं, तो ये हथकड़ी बनी हुई है लोहे की, तो ये भी बंधन है। तो लोहे की हथकड़ी, इसकी तुलना की गई है तमोगुण से, कि कोई तमोगुण से बंधा हुआ है, मतलब लोहे की हथकड़ी से बंधा हुआ। ये है, ये एक्चुअली हथकड़ी है। आपको लग रहा होगा कि ये कोई शादी की रिंग है या कोई ब्रेसलेट, ये हथकड़ी है, लेकिन ये हथकड़ी बनी हुई है चांदी की, सिल्वर, और ये सोने की हथकड़ी। अच्छी लग रही? तो कौन सी पसंद करेंगे? होता यही है, हम लोग हंस रहे होंगे, लेकिन बद्ध जीव इतना मूर्ख बन जाता है, इसलिए विमूढ़ आत्मा भगवान बोल रहे हैं, इतना मूर्ख बन जाता है कि वो कहता है कि खैर सोने की हथकड़ी तो अच्छा ही रहेगा, और क्या, उसमें ये नहीं पूछता कि हथकड़ी से बाहर कैसे निकलो, हथकड़ी दो लेकिन सोने की दो या चांदी की दो या लोहे की दो। तो ये उदाहरण दिया जाता है कि तीन कैदी इन तीन हथकड़ियों से बंधे हुए, एक लोहे की हथकड़ी से, एक चांदी की, और एक सोने की हथकड़ी से। तो जो अब सोने की हथकड़ी से बंधा हुआ है वो देखता है इन दोनों को और कहता है कि क्या तुम्हारा स्तर है, मेरे को देखो, ये देखो सोने की है 24 कैरेट पूरा। तो कई बार हम देखते हैं कि जो सत्वगुण में स्थित हैं उनका डिसएडवांटेज क्या है, कि वो समझते हैं कि बस इससे ऊपर कुछ नहीं, हालांकि बंधन में है लेकिन उनको लगता है इससे ऊपर कुछ नहीं, जबकि उसके ऊपर उठना है, जो कि भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य, निस्त्रैगुण्य का अर्थ है कि ये जो तीन गुण हैं इनसे ऊपर गुणातीत बनो अर्जुन, वो भगवान बता रहे। तो चाहे कोई सत्व गुण में भी क्यों ना स्थित हो, फिर भी समझना चाहिए कि वो बंधन में ही स्थित है। हालांकि वो बंधन दिखने में थोड़ा अच्छा बंधन दिख रहा होगा, तो कई बार बंधन जब अच्छा दिखता है तो हमको लगता है कि ये स्वीकारणीय बंधन है। नहीं, भगवान कह रहे हैं कि उसके भी ऊपर उठना है हमें। अब एक उदाहरण दिया गया है हमारे शास्त्रों में कि हमें इन तीन गुणों के वजह से एक नया शरीर कैसे प्राप्त होता है। हाउ डू वी गेट अ न्यू बॉडी, क्योंकि जो पुनर्जन्म है वो निर्धारित, वो निर्भर किस पर होता है, हमारे कर्मों के ऊपर। और हमारे जो कर्म हैं वो किस पर निर्भर हैं, ये तीन गुणों के ऊपर। तो उदाहरण दिया गया है एक पेंटिंग का, जैसे कि एक पेंटर पेंटिंग बनाता है, उसका उदाहरण दिया गया। तो हमारी जो इच्छाएं हैं वो उस ब्रश के समान है जिसको इस्तेमाल कर कर एक पेंटर पेंटिंग बनाता है। तो यदि आप पेंटर से पूछिए कि क्या आवश्यक है आपको ये पेंटिंग बनाने के लिए, तो सबसे पहले वो कहेगा मुझे एक ब्रश चाहिए। तो ब्रश की तुलना इच्छाओं से की गई, और फिर वो मांगेगा क्या, रंग चाहिए, कलर्स चाहिए। तो तीन बेसिक कलर तो चाहिए जिसको मिक्स करके वो और कलर्स बनाएगा। तो प्रकृति फिर इच्छाओं के बाद हमें ये तीन गुण देती है कि हां तुम्हारी इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये जो तीन गुण हैं इनको मिक्स कर कर तुम तुम्हारे इच्छाओं को पूरी करो। फिर बद्ध जीव कौन है, पेंटर। और फिर नई बॉडी या नया शरीर जो हमें प्राप्त होता है वो है हम एक नई पेंटिंग हमारी खड़ी करते हैं। तो हमारे डिजायर्स, हमारी इच्छाओं के वजह से जो कि तीन गुणों के अधीन हम बद्ध जीव हमारे अनगिनत शरीरों के अंदर जाते रहते हैं, या आत्मा जाता रहता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए हमें एक ऐसा शरीर प्राप्त हो। तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे कि ये जो शरीर है ये प्रकृति ने बहुत सोच समझ कर पहले से बना के रखे हैं, इन सब का मोल्ड शरीर का पहले से बना के रखा है, और हमारी जो इच्छा होती है उसके अनुसार हमको ये शरीर दिए जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद उदाहरण दिया करते थे कि ये जो अब शरीर हमें प्राप्त हो गया है हमारी इच्छाओं के वजह से और तीन गुणों के वजह से, प्रभुपाद ने उदाहरण दिया एक वाहन के समान है। अब देखिए इस उदाहरण को यदि हम और गहराई से समझने की कोशिश करें, आप लोग सब मंदिर आए, आप लोग किसी वाहन से आए होंगे, या तो वाहन खुद चलाकर खुद का वाहन लेकर आए होंगे या किसी और वाहन में बैठकर आए होंगे। तो मैं यदि पूछूं कि कितने अलग अलग प्रकार के वाहन होते हैं, कुछ एग्जांपल्स आप दीजिए अलग अलग प्रकार के वाहन, कार, मोटरसाइकिल, साइकिल, रिक्शा, बस, ट्रक, ट्रैक्टर, टेम्पो। क्या कोई ट्रक में बैठ के आया जहां, आप लोगों का हो सकता है कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी हो लेकिन ट्रक निकाल के लाए आप, चलो आज मंदिर में ट्रक लेके चलते। तो क्यों नहीं, ट्रक क्यों नहीं, अगर मैं पूछूं कि आप ट्रैक्टर में बैठ के क्यों नहीं आए मंदिर, ट्रैक्टर भी तो वाहन है, उसके भी पहिए हैं, उसमें भी इंजन है, वो भी आगे चलता है, वो भी उसकी भी रफ्तार है, आप ट्रैक्टर में बैठकर क्यों नहीं आए? क्या बोलोगे? हाँ, क्या हो गया? अच्छा, खैर इसके बाद मीटिंग उसी के लिए, पार्किंग की जगह बना रहे हैं तो कुछ तीन महीने बाद आप ला सकते हो ट्रैक्टर भी। अब देखिए, जैसे ये एक सही व्हीकल है, एक ऐसी व्हीकल किसी ने बनाई हुई है, तो खैर उसका नाम बहुत अजीब दिया है उन्होंने, तो अजीबोगरीब वाहन होते हैं। जैसे ये वाहन देखिए, ये व्यक्ति ने बनाया हुआ है, इसका पर्पज अलग है, एक ये वाहन है, जूता नहीं है, वाहन कार है। अभी देखिए, कई लोग ये, मुझे नहीं लगता है कि ये व्यक्ति इस वाहन में बैठ के कभी मंदिर जाएगा। एक ये भी वाहन है, और ये रामदेव बाबा का ट्रक है। तो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया कि सबसे पहले हम जब कोई वाहन खरीदते हैं, तो वाहन खरीदने से पहले हम क्या ध्यान में रखते हैं, पर्पस क्या है। अगर किसी को ट्रांसपोर्ट कंपनी खोलनी है, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी खोलने के लिए वो मोटरसाइकिल नहीं खरीदेगा या साइकिल नहीं खरीदेगा कि इतनी सारी साइकिल खरीद लियो, चलो उसमें पीछे लगा लगा के ट्रांसपोर्ट कर रहा है लोगों के सामान। उसके लिए वो ट्रक खरीदेगा बड़े बड़े। अब आप देखिए, लोग जब शादी करते हैं तो शादी में दूल्हा दुल्हन बैठते हैं ना, एकदम सजी हुई को ऐसे आलिशान गाड़ी होती, कभी आपने देखा कि वो दूल्हा दुल्हन ट्रक के पीछे बैठे हुए एकदम उसको सजाया हुआ है? तो पर्पज व्हीकल का, तो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया, उसी प्रकार से जो हमारी इच्छाएं होती हैं, हम हमारी इच्छाओं के बलबूते पर ये वाहन लेते हैं प्रकृति से। प्रकृति कौन है? वाहन सप्लाई करती है। हमारी इच्छाओं और हमारे कर्मों के आधार पर हमको वाहन मिलता है। तो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया कि यदि किसी की इच्छा है कि वो दिन भर खाता रहे खाता रहे खाता रहे, तो फिर प्रकृति देखती है कि अरे भाई, तुम्हारा ये जो मनुष्य शरीर है ये सूटेबल नहीं है, ये इसका पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा है। तो फिर उसकी उस इच्छा और कर्मों के वजह से प्रकृति तीन गुणों को लेते हुए उसको हाथी का शरीर दे देगी, या फिर कोई ऐसे सुअर का दिन भर मुंह मारता रहता है यहां, तो वैसा शरीर मिलेगा, दिन भर चर 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 खाता रहेगा। किसी को प्रभुपाद ने उदाहरण दिया कि कई जो हैं वो बहुत काम वासना में युक्त रहते हैं, तो उनको उस प्रकार का शरीर मिलता है। और एक हमारे भक्त बता रहे थे कि कई जो हैं उनको पेड़ की योनि मिलती है, क्योंकि वो निर्वस्त्र घूमना चाहते हैं, तो इसलिए प्रकृति उनको पेड़ की योनि दे देती है, खड़े रहो 100 साल बिना कपड़े के। इसके बारे में मैं सोच रहा था कि जो प्रभुपाद ने कहा कि जो निर्वस्त्र रहना चाहते हैं, आजकल कलयुग में बहुत हैं, तो उनको पेड़ की योनि दी जाती। अब देखिए, बाय चांस इनका नाम ऐसा नहीं हुआ है हॉलीवुड और बॉलीवुड, लास्ट में क्या है, वुड, वुड कहां से आता है? पेड़ से आता है। तो ये हॉलीवुड और बॉलीवुड में हो क्या रहा है? यही हो रहा है, अंग प्रदर्शन जिसे कहते हैं। तो उसकी वजह से फिर पेड़ों की संख्या बढ़ रही है। तो जो वाहन है वो उस प्रकार से दिया जाता है कि प्रकृति देखती है कि तुमने क्या कर्म किए हैं, कौन सी इच्छाओं को लेते हुए, गुणों के आधार पर, और फिर शरीर मिलता है उस प्रकार से। तो अब ये जो 84 लाख योनियां हैं, ये 84 लाख योनियां, देखो कैलकुलेशन देखो प्रकृति का, कि जितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तीन गुणों के किसी के हो सकते हैं, उन सब के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और इमेजिनेशन को लेते हुए 84 लाख योनियां बना दी, कि जीव ये 84 लाख इमेजिनेशन के बाहर इमेजिन ही नहीं कर सकता, कोई शरीर नहीं कर सकता। तो जितना वियर्ड इमेजिनेशन बोलो, फार आउट इमेजिनेशन बोलो, वो सब 84 लाख योनि के अंदर। और ऐसे ऐसे प्राणी हैं कि वो आत्मा ने ऐसी इच्छा की थी और ऐसे कर्म किए थे कि उनको, जैसे गेंडा, जानते हैं आप लोग, हिप्पोपोटामस, आप उसको देखोगे तो आपको विश्वास नहीं होगा। आप अभी कोई अगर हमको पूछे कि भाई कैसे लगी योनि में, जाना चाहो जाओगे, पागल हो गए योनि में। लेकिन किसी जीव ने किसी ऐसे समय उसने इच्छा की कि मुझे ऐसा शरीर मिलना चाहिए, तो इसलिए प्रकृति ने एक कैटेगरी बनाई कि ऐसा शरीर होना चाहिए, एकदम मोटा, मोटी चमड़ी वाला, दिखने में ये ऐसा भारी भरकम शरीर। तो किसी ने ऐसी इच्छा की इसलिए ऐसा वो शरीर बना। तो उसके हम चर्चा करेंगे कि ये जो फ्री विल हमारे पास है, वो फ्री विल के वजह से प्रकृति हमें क्या क्या प्रदान कर दे रही। तो अब सर्वशः शब्द का अर्थ जो भगवान ने आज के श्लोक में सर्वशः कहा है, तो अब ये प्रकृति के जो तीन गुण हैं ये सर्वत्र व्याप्त हैं। ये नहीं कि ये केवल इस पृथ्वी लोक में है, स्वर्ग लोक में तीन गुण नहीं है, नहीं, तीन गुण वहां पर भी है, ब्रह्म लोक से लेके पाताल लोक तक जितने लोग हैं इस पूरे भौतिक सृष्टि में ये तीन गुण व्याप्त हैं। तो पूर्ण रूप से और सर्वत्र, कि सब जगह पूर्ण रूप से व्याप्त है और सब जगह व्याप्त है, भगवान ने कहा आज के श्लोक। अब ये जो प्रकृति है इनकी अधिष्ठात्रा देवी हैं दुर्गा देवी। तो प्रभुपाद ने अपने एक प्रवचन में उदाहरण दिया, दुर्गा देवी इज लाइक द पुलिस। अब पुलिस को देखकर क्या मन में विचार आता है? जब हम पुलिस को देखते हैं तो क्या विचार आता है? अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग विचार होगा पुलिस को देखने के बाद। चोर होगा, जब वो पुलिस को देखेगा तो उसका विचार क्या आएगा? अरे बाप रे, भागो, दूर भागो। जो चोर उच्चका होगा वो पुलिस को देखकर उसके मन में विचार आएगा कि मुझे दंड देने के लिए घूम रहा है। और जो कानून का पालन कर रहा है वो जब पुलिस को देखता है तो उसके मन में विचार क्या आता है? कि ये मेरे प्रोटेक्शन के लिए घूम रहे हैं पुलिस। तो प्रभुपाद ने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जो भगवान के नियमों का पालन करते हैं वो जब प्रकृति को देखते हैं या तीन गुणों को देखते हैं, दुर्गा देवी के प्रभाव को देखते हैं, तो उनके मन में क्या विचार आता है? ये मेरे प्रोटेक्शन के लिए। और जो भगवान के शास्त्रों का नियमों का पालन नहीं करते वो जब प्रकृति को देखते हैं तो उनके मन में विचार है कि ये मुझे केवल दंडित करने के लिए है। तो बहुत ही सिंपल टेस्ट है कि हम प्रकृति को किस दृष्टि से देख रहे हैं, उससे समझ में आ जाएगा कि हम भगवान के भक्त हैं या नहीं। अगर हम प्रकृति को इस दृष्टि से देख रहे हैं कि मेरी सुरक्षा के लिए है तो तो हम भगवान के भक्त उस पथ पर हैं, यदि नहीं तो जो भगवान बता रहे विमूढ़ आत्मा आज के श्लोक में वो है। अब ये प्रश्न है कि क्या मेरे पास, आपने ये सब जो बताया कि ये प्रकृति, इसके तीन गुण और काल का प्रभाव, इन सब के वजह, तो क्या मेरे पास कोई चॉइस रह गया है? इज देयर एनीथिंग कॉल्ड फ्री विल? डू आई हैव एनी चॉइस देन? ये जो लोग कहते हैं कि तुम्हारे तकदीर में जो है, तुम्हारे नसीब में जो है, तो क्या मेरा तकदीर, मेरा नसीब, मेरा भाग्य वही मुझे कुछ सब कुछ करा रहा है या मैं कुछ कर रहा हूं? क्योंकि आज के श्लोक में भगवान ने क्या कहा है, अहंकार, कि जो अहंकारी व्यक्ति है वो समझता है कि मैं कर रहा हूं। तो अब इसमें देखिए, कई बार लोग इसका सहारा लेते हैं, इसकी आड़ में भक्ति नहीं करते, बाकी सब करेंगे लेकिन इसकी आड़ में भक्ति नहीं करेंगे। तो कहते हैं कि भाई मैं थोड़ी कर सकता हूं, वो तो भगवान कराएंगे। मतलब कई बार लोगों का ये कहने का आशय होता है कि भगवान उनके घर में आकर माला उनके हाथ में देंगे और उनको बोलेंगे कि ऐसे ऐसे जप करो, जब भगवान देंगे माला और कराएंगे, और कई बार तो बोलेंगे वो करेंगे, वो करेंगे, और आप क्या करो, मैं टीवी देखूंगा। तो जब बाकी सारे कार्य आते हैं तो मैं कर रहा हूं, और जैसे ही कोई सत्वगुण के कार्य से उनकी अपेक्षा की जाती है तो वो तो कराएंगे ना, भगवान कराएंगे। तो अब ये जो प्रश्न है, क्या ये वैलिड क्वेश्चन लग रहा है आपको? ये तीन गुण यदि सब कुछ करा रहे हैं तो फिर मैं क्या कर रहा हूं? फिर तीन गुण करा रहे हैं ना, मैं तो कठपुतली हूं। लोग बोल रहे हैं अरे मैं तो कठपुतली, आपने दिखाया फोटो, वो जो तीन देवियां हैं सत्वगुण वो सब कुछ करा रहे हैं, मैं अगर सिगरेट पी रहा हूं तो नहीं नहीं मैं नहीं, यहां पे वो धागा बांधा गया था दोनों उंगलियों में और सिगरेट भी उन्होंने अटकाया और वो करा रहे हैं, मैं सिगरेट। तो इसके उत्तर एक उदाहरण दिया गया कि जैसे कोई किसी होटल में जाता है, किसी रेस्टोरेंट में जाता है, तो पूछा जाए कि क्या जब वो किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाता है तो उसके पास फ्री चॉइस या फ्री विल है क्या? क्या कहोगे आप? जो उसको इच्छा किया वो खा सकता है क्या वहां पर? हाँ या ना? हाँ, दोनों चीज है इसके अंदर। अब वहां वो गया है तो कोई जबरदस्ती तो उसको वेटर ने बोला यही खाना पड़ेगा, यही खा, यही खा, क्यों यही खा? क्योंकि ज्यादा बन गया, खा, अभी इसको फेंकेंगे, खा तू खा, नहीं भाई मेरे को नहीं खाना, मुझे मेरी पसंद का कुछ खाना। तो जब वो अपनी पसंद का कुछ खाने जा रहा उस हिसाब से जाएगा ना वो। अब जैसे कई बार लोग आज चाइनीज खाना है तो वो ढूंढते हैं किसी चाइनीज होटल को ढूंढते हैं, तो उन्होंने अपना फ्री विल एक्सरसाइज किया ना वहां पे कि उन्होंने वहां जाकर चाइनीज खाया। लेकिन हर समय ये लेकिन आ जाता है, किंतु आ जाता है, कि किसी होटल में भी जा रहा है तो वो जाकर वहां पर जो मेन्यू कार्ड है उसके अंदर जो चॉइसेस हैं जो कि होटल वाले ने बना रखा है, वो होटल वाला जाके सब कस्टमर को नहीं पूछा, अच्छा तुमको क्या पसंद, चलो मेन्यू कार्ड में लिख, तुमको क्या पसंद, नहीं नहीं नहीं, उसने अपने हिसाब से बना दिया मेन्यू कार्ड, आप आओ उसमें से चूज करो, कोई जाके नहीं बोल सकता मेरी जो मां बनाती ना पराठे वो बना के ला, बोला जा माँ के घर, घर पे जाके माँ के खा, इधर तो जो ढेचू बनाएगा वही खाना पड़ेगा, जो भी कुक रहेगा अंदर का। तो वहां पर चॉइसेस बहुत दिख रहे हैं, लेकिन वो चॉइसेस क्या हैं, वो सब एक दायरे के अंदर है। अब जैसे कई बार लोग कोई बड़े होटल में जाते तो उनको लगता है कि बड़े होटल में बहुत ज्यादा फ्रीडम होगा मुझे, छोटे होटल्स में जो ढाबे वाबे होते हैं रोड साइड या कोई टपरी दुकान हो ही कोई, तो वहां पे चॉइसेस कम होंगे। तो बड़े होटल में तो ताज में जाते हैं। एक व्यक्ति ताज में गया चाय पीने के लिए, तो वहां पे गया तो वो वेटर ने पूछा तो कौन सी चाय पियेंगे, ग्रीन टी, ब्लैक टी, ब्राउन टी? भाई वही जो सादी वाली दूध वाली चाय होती। अच्छा दूध, दूध कौन सा दूध पियेंगे, गाय का, भैंस का, बकरी का, ऊंट का? बोला भैया जो दूध, पानी, पानी कौन सा पानी, डिस्टिल्ड वाटर, मिनरल वाटर, बॉइल्ड वाटर, कौन सा पानी उसके अंदर यूज करें, ये सब ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। शुगर कौन सा, ब्राउन शुगर, व्हाइट शुगर, कौन सा शुगर, केन शुगर, कौन सा शुगर? बोला भैया जो आम आदमी चाय पीता है वो चाय लाओ, बोला वो बाहर मिलेगी। तो चॉइसेस इतनी दिखते हैं, ताज में जाओ तो आप 500 रुपए की एक चाय और वो भी आपको ही बनानी पड़ती है। तो कई बार दिखता है स्वर्ग लोक में बहुत फ्रीडम है, तो स्वर्ग लोक कैसा है, वो ताज के जैसा है। वहां एंट्री करोगे तो सब कुछ वो बहुत चॉइसेस और फ्रीडम दिखता है, लेकिन वो ये चाय के फ्रीडम के समान है। फिर वो तंग आकर दूर बाहर देखता है बाबूलाल टपरी वाला, उसके पास जाता है, ये कटिंग मार। तो उसको वहां शांति में कटिंग मिल रही है, उसमें वो संतुष्ट हो जाता है कि वो सब कुछ बना मनु के दे रहा है। तो चाहे वो ताज में जाके इतने अलग अलग चॉइसेस की चाय पिए, या चाहे वो किसी टपरी दुकान में जाके कटिंग पिए, वो है तीन गुणों के अधीन ही, ये भगवान बता रहे हैं। तो जो ये तथाकथित फ्री विल, जिसको हम कहते हैं या फ्री चॉइस, ये फ्री चॉइस है क्या, ये प्रकृति का बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि हमको फ्रीडम ऐसे दिखाया है कि आप फ्री हो, आपको इतना फ्रीडम दिया गया है, स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन फिर प्रकृति का जो मेनू कार्ड निकलता है, कौन सा मेनू कार्ड है, 84 लाख योनियों का मेनू कार्ड, इसमें से ही चूज करो, इसमें से ही तुमको मिलेगा शरीर। लेकिन जब जीव ये जान लेता है कि मुझे यदि इस प्रकृति के मेनू कार्ड के बाहर कुछ खाना है तो मुझे अपने घर जाना होगा, कहां जाना होगा, और घर में मैं फिर बोल सकता हूं कि मुझे ये बना के दो और इस प्रकार से बना के दो, उसके अंदर ये होना चाहिए, ये सब कुछ वो घर में बोल सकता है, वो होटल में डिमांड नहीं कर सकता। तो ये उदाहरण से क्या समझ में आ रहा है, यदि हमें प्रकृति के मेनू कार्ड के बाहर कुछ ऑर्डर करना है तो हमें कहां जाना होगा, हमारे घर जाना होगा। और जब हम हमारे घर पहुंचेंगे तो वहां घर का खाना जो कि स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, यहां होटल का खाना क्या है, एक तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, दिखने में चकाचौंध दिखता है, दिखने में वो लोग ऐसे लाकर दिखाएंगे, वो आप कुछ भी ऑर्डर करो इतनी बड़ी प्लेट में ऐसे वो हंसते हुए लाके देगा, लेकिन आपको पता नहीं कि अंदर उसमें कितना उसने अपना खून पसीना डाला है, असलियत में डाला है उसको बनाने के लिए। तो इसलिए निष्कर्ष ये है कि यदि हमें प्रकृति के तीन गुणों के बाहर निकलना है तो हमें प्रकृति द्वारा दिए गए मेनू कार्ड के बाहर के दायरे में सोचना होगा। और वही आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण प्रारंभ किए बताना। तो अभी पार्ट टू में हम अगले हफ्ते डिस्कस करेंगे बहुत ही जो सेकंड सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है? अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, कि इतना होने के बावजूद, इतने बंधन में होने के बावजूद जीव जो कि विमूढ़ात्मा बना हुआ है सोचता है कि मैं कर रहा हूं, सोचता है कि ये मेरा होटल है, ये मेरा मेनू कार्ड है, ये मैं ऑर्डर कर रहा हूं, ये मैं खा रहा हूं, इतना होने के बावजूद तो कैसे वो विमूढ़ात्मा बन रहा है, कैसे वो अपने आप को कर्ता मान रहा है और उसके क्या परिणाम हो रहे हैं, इसको जानने के लिए अगले बुधवार को आप ठीक इसी समय आ जाइए। हरे कृष्णा।